आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। 3 महीने बाद 1948 साल के अप्रैल की एक सुबह, इस इलाके में अखतिया पदुआ बदै बाने वाले किसान को चाहिए कि सूरज उगने के पहले ही खेत को चार चास कर दें। बुरकुआ तारा जगमगा रहा है, कमला नदी के गड्ढे में उसकी छाया झिलमिला रही है, लगता है नील कमल खिला है। कंधे पर हल लिए मरियल बैलों को हाँकता हुआ जा रहा है विरंची। कोयरी टोला के सोबरन का 3 बीघा खेत मनकुत्ता पर जोतता है, मगर इस साल टोटा पड़ेगा। उसकी सूरत दिया सलाई की डिबिया में जैसे हलवाहे की छापी रहती है, एकदम दुबला पतला काला कलूटा वैसी ही है। खिलावन अब खुद भैंस चराता है। 3 बजे रात में भैंस जैसा चरती है, वो दिन भर में नहीं चरेगी। अब तो उसका अपना रमना भी नहीं है, इसीलिए धत्ता की ओर ले जाता है। खिलावन यादव टोली का मर्डर भैंस चराकर लौट रहा है। आसमान साफ हो रहा है, सबके चेहरों पर सुबह का प्रकाश पड़ता है, झुमाई हुई ईंट जैसे चेहरे। तहसीलदार साहब का ट्रैक्टर लेकर डिलीवर साहब निकले। तहसीलदार साहब 2 मंजिले की छत पर खड़े हाथों को पीछे की ओर बांधे टहल रहे हैं। भट छत दलकती है, उसी के ताल पर उनका कलेजा धुकधुका रहा है।
कौन आ रहा है? कौन? सेबिया?
चुप, धीरे से।
क्या क्या?
तहसीलदार साहब पूछते हैं।
बता, नाती भेल हो।
सेबिया हंसती है।
चुप, जिंदा है या
गुजुर है रे छे?
उफ भगवान।
तहसीलदार साहब थर थर कांप रहे हैं। कमली नदी के उस पार, अधपके रब्बी की फसल के उस पार, सेमलबाड़ी के जंगल के उस पार आसमान लाल हो गया है। दक्षिण कोठी के बाग में गुलमोहर के लाल लाल डालियां दमक उठती हैं। ड्योढ़ी के उस पार बच्चे के रोने की आवाज नहीं जाने पावे। इंतजाम हो रहा है, कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। यदि बच्चा जोर से रोए,
हैं, गला टीप दो, मार डालो।
दिल्ली में राजघाट पर बापू की समाधि पर रोज श्रद्धांजलियां अर्पित होती हैं। संसार के किसी भी कोने का, किसी भी देश का आदमी आता है, वहां पहुंचकर अपनी जिंदगी को सार्थक समझता है। कलिमुंदीपुर में नागर नदी के किनारे चोरघट्टा के पास साहुड़ के पेड़ की डाली से लटकती हुई खद्दर की झोली को किसी ने शायद टपा दिया है। कौन लेगा? दुलार चंद कापरा ने 1 महीने के बाद जाकर देखा, झोली तो लटक रही है डाली से। जिला कांग्रेस का कोई भी वर्कर देखते ही पहचान लेगा, बावन दास की झोली है। झोली कापरा ने टपा दी, मगर झोली का फीता अभी भी डाली में झूल रहा है। किसी दुखिया ने इसे चेथरिया पीर समझकर मनौती की है, अपने आंचल का एक खूंट फाड़कर बांध दिया है।
मनोकामना पूरी हो तो नया चेथरा चढ़ाऊंगी,
बहुत बड़ी आशा और विश्वास के साथ वो गिरह बांध रही है। 2 चीथड़े। पूर्णिया जेल के सामने बड़ा पुराना बटवृक्ष है, उसके नीचे सूखी हुई पत्तियां हवा में इधर उधर उड़ रही हैं। बट के बंधाए चबूतरे के पास एक युवती खड़ी है, साथ में है प्यारू। खाली देह पर एक पुराना गमछा रखे, सिर्फ जांघिया पहने एक फाडर साहब बार बार बारीक से निकलकर युवती को देखता है।
आप डॉक्टर साहब की वाइफ हैं?
युवती ने गर्दन हिलाकर कहा। नहीं। वार्डर साहब प्यारू की ओर देखते हैं। प्यारू इस वार्डर को जानता है, बड़ा बेकूफ है, हमेशा खराब खराब बात बोलता रहता है। वो मुंह फेर लेता है। जेल का लौह कपाट झनझनाकर खुलता है। युवती के चेहरे पर से प्रतीक्षा की बेचैनी हट जाती है। उसके चेहरे पर हाल ही में जो छोटी छोटी झुर्रियां पड़ गई थी, धीरे धीरे खिल पड़ती हैं। डॉक्टर इस तरह मुस्कुराता, डेग बढ़ाता, हाथ में छोटा बैग लिए आ रहा है, मानो लेबोरेटरी से छुट्टी पाकर लौटा है। प्यारों का चेहरा देखने काबिल हो रहा है। वो अपने अंदर में उठने वाले खुशी के आवेगों को दबाता है, किंतु उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला हुआ है।
तुम भी किसी जेल में थी क्या?
नहीं बाबा, ऐसी किस्मत लेकर नहीं आई। झुको, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद है।
युवती रुमाल से सूखे बेलपत्तर और फल निकालकर डॉक्टर प्रशांत के सिर से छुलाती है।
तब प्यारू क्या हाल है? ममता, प्यारू से बातचीत हुई या नहीं?
सुबह से और क्या कर रही हूँ?
ममता हंसते हुए कहती है।
घोड़ा गाड़ी बुलाइए प्यारी चंद सरकार।
प्यारू हंसता लंगड़ाता कचहरी की ओर जाता है। 3 बजे रात में
तीन बजे रात में पहुंची पूर्णिया स्टेशन।
ज्योति दी तो आजकल यहीं है ना?
उनके डेरे पर गई, सुबह उठकर कलेक्टर साहब के बंगले पर गई। दस्ता ऑर्डर साथ में था तुम्हारे रिलीज का। ज्योति दी ने कहा, यदि कलेक्टर साहब टूर पर निकल गए तो फिर देर हो सकती है, तो अभी कहाँ चलना है?
ममता मुस्कुराती है, तुम मेरीगंज नहीं चलोगी?
क्यों नहीं, मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली है।
एसपी साहब का चपरासी खत लेकर आया है।
एसपी साहब ने डॉक्टर को अपने बंगले पर निमंत्रित किया है।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।